नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि ये जो कर्मों का हिसाब किताब है, ये आखिर होता कैसे है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई अच्छे लोग दुख पा रहे हैं और जो ठीक नहीं है वो मजे में है? आज ना हम श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक किताब है गहना कर्मणो गति, उसके कुछ विचारों को लेकर कर्म की इस गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो यही आता है मन में कि क्या सच में कोई चित्रगुप्त बैठा है जो सब लिख रहा है?
हाँ, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, पुरानी कथाओं में, पुराणों में चित्रगुप्त का जिक्र तो मिलता है कि वो हर जीव के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, पर आचार्य जी इसे एक अलग, कहें तो ज्यादा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं।
तो फिर मतलब ये चित्रगुप्त सिर्फ एक कल्पना है?
क्योंकि सोचिए ना, अरबों लोग हैं, फिर अनगिनत योनियां, इतने सारे जीव जंतु, इन सबका हिसाब कोई बाहर बैठ के कैसे रख सकता है? ये तो असंभव सा लगता है। हाँ बिल्कुल आचार्य जी, और यहां तक कि आज की कुछ रिसर्च भी इसे किसी बाहरी शक्ति से नहीं जोड़ते, वो इसे हमारी अपनी ही अंतः चेतना, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उससे जोड़ते हैं।
अच्छा, अपनी अंतः चेतना से? कैसे?
सोचिए, जैसे पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे ना, उन पर आवाज बारीक लकीरों में दर्ज हो जाती थी, ठीक वैसे ही हमारे हर काम का, चाहे अच्छा हो या बुरा, यहां तक कि हमारे विचारों का भी, एक बहुत सूक्ष्म निशान, एक तरह की कर्म रेखा हमारे ही मन पर, हमारे अंदर लगातार बनती रहती है
हर पल।
हाँ, हर पल, हर जीव में ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, अपने आप चलती है। तो एक तरह से समझिए, हर किसी का अपना चित्रगुप्त उसके अंदर ही है, उसका अपना अवचेतन मन जो पूरी ईमानदारी से बिना किसी पक्षपात के सब कुछ दर्ज कर रहा है। हमारा बाहरी मन तो बहाने बना सकता है, तर्क दे सकता है, चालाकी कर सकता है, पर वो अंदर का मन सब जानता है।
अरे वाह, मतलब हिसाब किताब अंदर ही चल रहा है। ये सोच तो बिल्कुल अलग है, पर ठीक है, अगर सब अंदर दर्ज हो रहा है तो फिर उसका फल वो कब और कैसे मिलता है? कभी लगता है कुछ किया और तुरंत नतीजा मिल गया, कभी सालों लग जाते हैं, और कभी तो अचानक से कुछ अच्छा या बुरा हो जाता है जिसे हम बस क्या कहते हैं, किस्मत मान लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, यहीं पर कर्मों के अलग अलग प्रकार समझने जरूरी हो जाते हैं। आचार्य जी के अनुसार देखिए, मोटे तौर पर तीन तरह के कर्म होते हैं। पहले हैं क्रियामाण।
क्रियामाण?
हाँ, क्रियामाण मतलब वो कर्म जिनका फल फौरन या बहुत जल्दी मिलता है। जैसे आग में हाथ डाला तो जलन होगी ही, ये सीधा एक्शन रिएक्शन है।
समझ गई। और दूसरे?
दूसरे हैं संचित कर्म। ये वो कर्म है जो थोड़े हल्के होते हैं, शायद अनजाने में हो गए, या किसी मजबूरी में, या बिना किसी गहरी भावना या इरादे के किए गए हों, ये इकट्ठे होते रहते हैं, फिर जब सही माहौल, सही परिस्थिति बनती है तब इनका फल मिलता है। और हाँ, कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों के प्रभाव से ये नष्ट भी हो सकते हैं।
अच्छा, ये हल्के कर्म है, और तीसरे आपने कहा तीन तरह के हैं।
हाँ, तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण है प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध, ये शब्द सुना तो है पर इसका मतलब क्या है?
प्रारब्ध वो कर्म है जो पूरी इच्छा से, तीव्र भावना से, सोच समझकर, जानबूझकर किए जाते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे हों या बहुत बुरे। इनका असर बहुत गहरा होता है, इनकी छाप बहुत पक्की होती है, और यही प्रारब्ध कर्म है जो अक्सर उन अचानक लगने वाले बड़े सुख या दुख का कारण बनते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और भाग्य का खेल कह देते हैं।
ओहो, तो जो अचानक लगता है वो असल में पुराने गहरे कर्मों का फल है।
बिल्कुल, इनके फल मिलने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है, कई बार तो जन्म भी लग जाते हैं, क्योंकि उनके फलित होने के लिए एक खास तरह की परिस्थिति का बनना जरूरी होता है। तो ये जो देरी है, ये भगवान की मर्जी या कोई नाइंसाफी नहीं है, ये बस कर्म के फल के पकने की एक नेचुरल प्रक्रिया है। संचित कर्म हल्के हैं, मिट सकते हैं, पर प्रारब्ध कर्म गहरे हैं, उनका फल तो भोगना ही पड़ता है, देर से ही सही। ये बात तो बहुत सोचने वाली है, मतलब जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, चाहे वो हमें तुरंत दिखे या ना दिखे। लेकिन एक और सवाल मन में आता है, क्या हर दुख, हर तकलीफ जो हमें मिलती है वो किसी ना किसी पाप का ही नतीजा होती है?
देखिए, आम तौर पे लोग यही मानते हैं, पर आचार्य जी कहते हैं कि ये पूरी तरह सही नहीं है। ये सच है कि हाँ, पाप कर्मों से दुख मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मन में ईर्ष्या, जलन, छल कपट रखना, इनसे मानसिक दुख, अशांति मिलती है। गलत खानपान, हिंसा, अति भोग, इन शारीरिक पापों से शरीर को कष्ट, बीमारियां मिलती हैं। और समाज के प्रति जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, अन्याय करते हैं या सहते हैं, तो उससे भौतिक दिक्कतें परेशानियां आती हैं। ये सब सही है।
हाँ, ये तो समझ आता है,
पर दुख आने के और भी कारण हो सकते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी दुख ईश्वर की कृपा भी हो सकता है।
कृपा? दुख कृपा कैसे हो सकता है? हाँ, कृपा एक तरह की चेतावनी, एक अलर्ट, ताकि हम किसी बड़े गलत रास्ते पर जाने से बच जाएं। छोटी सी तकलीफ देकर भगवान हमें सचेत कर देते हैं, या फिर ये हमारे ही पिछले अच्छे कर्मों, पुण्यों का प्रभाव हो सकता है। वो पुण्य हमें कोई बड़ी गलती करने से रोकने के लिए एक छोटी मोटी अड़चन खड़ी कर देते हैं। और एक और बात, जब हम धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, किसी अच्छे काम के लिए कष्ट उठाते हैं, तो वो भी तो दुख जैसा ही लगता है, पर वो असल में एक तपस्या है। इसलिए हर मुश्किल को, हर कष्ट को सीधे सीधे पाप का फल या भगवान का गुस्सा मान लेना ठीक नहीं। उसके पीछे और भी वजह हो सकती हैं।
वाह, ये सुनकर तो बड़ी राहत मिली कि हर तकलीफ सजा नहीं होती। पर फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये कर्म का जाल इतना जटिल है, इतना गहरा है, तो क्या हम बस इसकी कठपुतलियां हैं? क्या हमारे हाथ में कुछ है भी, या हम बस अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, हम मजबूर नहीं है। बल्कि आचार्य जी तो बहुत जोर देकर कहते हैं कि हम अपनी दुनिया के निर्माता स्वयं हैं।
अपनी दुनिया के निर्माता, वो कैसे?
देखिए, ये दुनिया एक आईने की तरह है। जैसा हमारा नजरिया होता है, जैसी हमारी सोच होती है, हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। हमारे अंदर जो होता है, वही हमें बाहर नजर आता है। अगर हमारी मनोवृत्ति अच्छी है, हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं, तो हमें दुनिया अच्छी लगेगी, अच्छे अनुभव हमारी तरफ खींचेंगे। अगर हम शक्की हैं, बुराई ढूंढते हैं, तो हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी। चोर को हर तरफ चोर दिखते हैं, संत को संत।
हाँ, ये तो है।
दुनिया तो त्रिगुणमयी है, सत्व रज तम, अच्छी बुरी मिली जुली, वो तो जैसी है वैसी रहेगी। फर्क हमारी दृष्टि का है, हमारे देखने के तरीके का है। हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। दूसरों में कमियां निकालने की बजाय उनके गुण देखने का अभ्यास करें। आचार्य जी इसे गुण ग्राहक दृष्टि कहते हैं। जैसी हम अपनी ये नजर बदलते हैं, हमारे अनुभव भी बदलने लगते हैं।
गुण ग्राहक दृष्टि सुनने में कितना पावरफुल लग रहा है। मतलब दुनिया वही है, बस अपना चश्मा बदल लो तो दुनिया बदल जाती है।
बिल्कुल, सार यही है कि अपनी सोच पर, अपने नजरिए पर काम करके हम अपने बाहरी हालात और अनुभवों को काफी हद तक बदल सकते हैं। हम कर्मों के प्रभाव में तो हैं, लेकिन हम पूरी तरह असहाय नहीं हैं। उस प्रभाव को बदलने की, उससे ऊपर उठने की शक्ति भी हमारे ही अंदर है।
तो कुल मिलाकर ये समझें कि कर्म की गति वाकई बहुत गहन है। ये कोई सिंपल प्लस माइनस का हिसाब नहीं है। ये हमारे मन, हमारी चेतना, हमारी भावनाओं से जुड़ी एक बहुत गहरी जटिल व्यवस्था है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि हम लाचार नहीं है। हम अपने नजरिए से, अपनी सोच से अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।
एकदम सही कहा। दुख हमेशा पाप का फल नहीं होता, ये याद रखना जरूरी है। और हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि, हमारे अनुभवों को बदलने की जबरदस्त ताकत रखती है।
आज की इस सारी बातचीत से एक ख्याल मन में घूम रहा है,
और वो ख्याल शायद ये हो सकता है कि अगर हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया को आकार देता है, तो आज इसी वक्त हम अपने नजरिए में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, मामूली सा बदलाव ला सकते हैं, जिससे अपने अनुभवों को बेहतर बनाने की शुरुआत की जा सके।